ओम शांति। प्रकृति का एक नियम है कि सूर्य उदित भी होता है और अस्त भी होता है, लेकिन अस्त होता है फिर से उदित होने के लिए। और ये भी सत्य है कि सूर्य कभी अस्त होता ही नहीं, वो हमेशा रहता है। आज की ये संध्या वेला, सूर्यास्त की वेला, एक ऐसे सूर्य की स्मृति हमें दिला रहा है जिसने आजीवन आध्यात्म का प्रकाश सारे संसार में फैलाया, जिनका जीवन हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है, जो अस्त नहीं हुए हैं, अब भी हजारों लाखों ब्रह्मावस्तों के मन में, हृदय में, चाहे वो देश के हैं या विदेश के, उनके हृदय में स्मृति बनकर, प्रेरणा बनकर वास कर रहे हैं। उनकी यादों को, उनकी प्रेरणाओं को पुनः ताजा करने के लिए आज की ये संध्या वेला है, जिसमें हम अपने आदरणीय वरिष्ठ भ्राता रमेश भाई जी को और साथ ही अनुरूप भाई मराठे जी को श्रद्धांजलि देने के लिए सभी उपस्थित हुए हैं। तो इस श्रद्धांजलि की शुरुआत मैं आदरणीय सतीश भाई जी के गीत से करना चाहूंगा। आदरणीय सतीश भाई जी भ्राता जी के बहुत समीप रहे हैं, उन्हें बहुत करीब से देखा है और उन्होंने उनकी विशेषताओं को शब्दों में पिरोया है, जिसे गीत के रूप में हम सुनेंगे और उन्हें याद करते हुए आज के इस श्रद्धांजलि की शुरुआत करेंगे। सतीश भाई जी।
यूं करोड़ों इस दुनिया में आते हैं और जाते हैं, कुछ होते कदमों के निशान जो छोड़ जगत में जाते हैं, नए राग में, नए भाव में, नया गीत वो गाते हैं, जिनके गाए गीतों को शेष सभी दोहराते हैं, शेष सभी दोहराते हैं, जिनके गुणों की गाथा गाता, जिनके गुणों की गाथा गाता, वो स्वयं अखिलेश भी ऐसे आदरणीय थे। प्रिय भ्राता रमेश जी ऐसे आदरणीय थे, प्रिय भ्राता रमेश जी, याद आएंगी सेवाएं वो, याद आएंगी सेवाएं वो, त्रिमूर्ति रत्न विशेष की, ऐसे आदरणीय थे। प्रिय भ्राता रमेश जी ऐसे आदरणीय थे, प्रिय भ्राता रमेश जी। भारत के गुजरात प्रांत के भावनगर में जन्म लिया, धर्म परायण भक्ति भाव के कुल में अच्छे कर्म किया, बाबा मम्मा दादियों को, बाबा मम्मा दादियों को आप जैसा रत्न मिला, शांता माता उषा बहन डॉक्टर अनिला का संग मिला, डॉक्टर अनिला का संग मिला। घर गृहस्थ में पवित्रता की, घर गृहस्थ में पवित्रता की क्या मिसाल पेश की। ऐसे आदरणीय थे प्रिय भ्राता रमेश जी, ऐसे आदरणीय थे प्रिय भ्राता रमेश जी। यज्ञ के आधार स्तंभ सेवा का विस्तार किया, गीतों में लो चित्र प्रदर्शनी क्या क्या आविष्कार किया। लेख लिखे पुस्तक रचे भाषण सुनाए रेडियो, सबको ज्ञान मिले बनाया गॉडलीवुड स्टूडियो, गॉडलीवुड स्टूडियो। सेंटर खोले यात्राएं की, सेंटर खोले यात्राएं की आपने देश विदेश की। ऐसे आदरणीय थे प्रिय भ्राता रमेश जी, ऐसे आदरणीय थे प्रिय भ्राता रमेश जी। ऋषि दधीचि सम अस्थियां भी तन को अपने गला दिया, समय श्वास संकल्प स्वप्न सब सेवा में था लगा दिया। ऋषि दधीचि सम अस्थियां भी तन को अपने गला दिया, समय श्वास संकल्प स्वप्न सब सेवा में था लगा दिया। नीति न्याय कानून का सख्ती से पालन करते थे, नीति न्याय कानून का सख्ती से पालन करते थे। यज्ञ का नुकसान न हो ध्यान बहुत ही रखते थे, ध्यान बहुत ही रखते थे। वफादार ईमानदार बन, वफादार ईमानदार बन, यज्ञ की देख रेख की। ऐसे आदरणीय थे प्रिय भ्राता रमेश जी, ऐसे आदरणीय थे प्रिय भ्राता रमेश जी। इस पार्क जुरिस्ट कल्चरल विंग को बड़े स्नेह से सींचा था, मूल्यों से माली महकाया बाबा का बगीचा था। विश्व सेवाधारी आपका सारा विश्व परिवार, विश्व सेवाधारी आपका सारा विश्व परिवार। श्रद्धा सुमन समर्पित करता कीजिए स्वीकार, कीजिए स्वीकार। अंत तलक भी सेवा की, अंत तलक भी सेवा की, जब तलक जान कुछ शेष थी। ऐसे आदरणीय थे प्रिय भ्राता रमेश जी, ऐसे आदरणीय थे प्रिय भ्राता रमेश जी। बहुत दूर तक नैया लाए और भी चलना था बाकी, बड़ी जरूरत अभी आपकी। छोड़ चले हो क्यों साथी, और भले सब मरते हो पर कलाकार ना मरता है। अपनी कला से भला वो करता, राज दिलों पर करता है। गीतकार मुझे बनाने वाले, गीतकार मुझे बनाने वाले, एक बार लो देख अभी। ऐसे आदरणीय थे प्रिय भ्राता रमेश जी, ऐसे आदरणीय थे प्रिय भ्राता रमेश जी, जिनके गुणों की गाथा गाता, जिनके गुणों की गाथा गाता, वो स्वयं अखिलेश भी। ऐसे आदरणीय थे प्रिय भ्राता रमेश जी, याद आएंगी सेवाएं वो, याद आएंगी सेवाएं वो, त्रिमूर्ति रत्न विशेष की। ऐसे आदरणीय थे प्रिय भ्राता रमेश जी, ऐसे आदरणीय थे प्रिय भ्राता रमेश जी, ऐसे आदरणीय थे प्रिय भ्राता रमेश जी।
भ्राता जी की याद हम सब के दिलों में बसी हुई है, उनकी शिक्षाएं सतत हमारे कानों में गूंजती हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, जैसे वो अथक होकर अपने हर पल को सफल करते रहे। वही प्रेरणा हम सब के लिए कि यज्ञ को हम सब भी उस मुकाम तक ले चलें जिस मुकाम तक ले जाने की शुभकामना आदरणीय भ्राता जी की प्रारंभ से ही रही, और बाबा को प्रत्यक्ष करने की जो शुभकामना रही है उसकी जिम्मेवारी, उसका बेड़ा अब हम सब ब्रह्मावत्सों को उठाना है। भ्राता जी के कुछ शब्द अब हम वीडियो के द्वारा उनकी प्रेरणा लेंगे, जो सतत वो हमें देते रहे हैं आदरणीय भ्राता जी के द्वारा।
हमारे आदरणीय और साथी हमारे निर्वेर भाई, भोपाल भाई, अलकाबेन, राजकुमार भाई और सभी जो भी बैठे हुए उस मंच पर, अंबिका बहन तो दादी जी को मेरे साथ में लेकर के आने के लिए गए हैं, आप सबका भी इस 20th जो मीटिंग जो चल रही है उसके अंदर आप सब पधारे, मैं भी स्वागत की कड़ी में अपना तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ, स्वागत करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं भी सोच रहा था कि स्पार्क की स्थापना कब हुई। मैंने निर्मल भाई से पूछा कि ज्ञान सरोवर की स्थापना और उसके माँ का कारोबार कब शुरू हुआ। उन्होंने बताया 1990 में। बराबर भाई, कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, निर्मल भाई ने ही ज्ञान सरोवर की जमीन के बारे में सौदा पहले किया हुआ था और उसके बाद कारोबार शुरू हुआ। 1990 में शुरू हुआ और 92 में उसका विधिवत उद्घाटन हुआ था। तब से स्पार्क, क्योंकि आपको मैंने बताया भी था पहले आपके जो रूम नंबर 13 है उसके अंदर शुरुआत करने के लिए दादी प्रकाशमणि ने ही हम सबको बताया था कि यहाँ पर बाबा ने कहा है कि रिसर्च का कारोबार होना चाहिए। तो 92 में ही संग हुआ, परंतु फिर शुरुआत के अंदर तो आप जानते हैं नाम का फाइनल करना, कारोबार कैसे करना चाहिए उस प्रकार से था। हमारे डॉक्टर मित्र थे, अनुराग भाई आदि जो भी पुराने भाई बहन थे, हमारा अरुण भाई भी जो अभी हेल्थ के कारण अभी यहाँ पर नहीं आ सकते हैं, उन सब के पुरुषार्थ के कारण और सहयोग के कारण यह विश्वविद्यालय का ये स्पार्क विंग जो है, रिसर्च विंग जो है, उसकी शुरुआत हुई और कारोबार शुरू हुआ। आप में से कई शुरू से ही इस कार्य में जुड़े हुए हैं, समय प्रति समय यह कार्यक्रम जो बाबा जो हमको बच्चों को बाबा ने सिखाया है उसमें हम परिवर्तन करते आए हैं, बाबा की प्रेरणा से, बाबा की डायरेक्शन से। जैसे मैं मिसाल के तौर पर कहता हूँ कि शुरू की यज्ञ की स्थापना हुई भारत में हुई, तो भारत के अंदर जो हुई तो भारत के अंदर तो आध्यात्मिकता जो है वो तो सबको बहुत ही उसका ज्ञान मालूम था, सबके लिए कोई नई बात नहीं थी भारत के लोगों के लिए कि लक्ष्मी नारायण कौन है, राधे कृष्ण कौन है, कौरव पांडव कौन है, राम सीता कौन है, रावण कौन है। इस प्रकार से आध्यात्मिकता का बेस जो है हमारे पास था और उसी बेस के आधार पर बाबा ने यह विश्वविद्यालय की स्थापना भी किया और लक्ष्य भी बताया कि हम सबको नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनने का कारोबार करना है। परंतु जब हम विदेश में गए, आपको मालूम होगा 1971 में विदेश की सेवा शुरू हुई, तो उस टाइम पर वहां पर जगदीश भाई और
भ्राता जी की मधुर आवाज, उनकी उपस्थिति को हम सब महसूस कर सकते हैं। ऐसा कतई नहीं महसूस हो रहा है कि वो हमारे बीच नहीं है, वस्त्र बदला है, लेकिन उनकी सूक्ष्म उपस्थिति अब भी हम सब अनुभव कर रहे हैं। अनंत गुणों की खान भ्राता जी के बारे में हम सब और भी जानना चाहते हैं और उनके गुणों से स्वयं को भी श्रृंगारित करना चाहते हैं। इसीलिए अब हम उन विभूतियों को मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं जिन्होंने उनके अंग संग्रह कर उन्हें करीब से देखा है, जाना है। मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय अंबिका दीदी जी को कि वो मंच पर आए। हरिलाल भाई जी, लता बहन जी, ललित भाई जी, सरोज बहन जी, अलका बहन जी, नागेश भाई, मुकुल भाई, आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप मंच पर आएंगे। दादी जी भी हमारे बीच पधारने वाली हैं और हम जानते हैं उस महामानव को जिसने अपना संपूर्ण जीवन जिनकी महिमा स्वयं परमात्मा करते हो, जो स्वयं भगवान के दिल में बसते हो, प्रकृति भी हमेशा जिनकी आज्ञा पर चलने वाली रही हो, और हम सब ब्रह्मवत्स भी जिन्हें बहुत ही दिल के स्नेह से, सम्मान से याद करते हैं, हम समझ सकते हैं कि उनका जीवन कितना अद्भुत, कितना अलौकिक और कितनी आध्यात्मिक शक्तियों से परिपूर्ण रहा होगा। ये मंच पर उपस्थित हमारी जो विशेष विभूतियां हैं, सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने भ्राता जी से बहुत कुछ पाया है। आज उनके द्वारा हम भी उन रत्नों को प्राप्त करेंगे और उन्हीं अनुभूतियों में खो जाएंगे जिन अनुभूतियों में ये खोए हुए हैं। यादें हमेशा हृदय में जीवित रहती हैं, प्रेरित करती रहती हैं। अनुरोध करूंगा आदरणीय अंबिका दीदी जी से प्रथमतः कि भ्राता जी के अनुभव को वो हम सबके बीच रखें। दीदी वीवीपुरम सब जोन की इंचार्ज हैं और साथ ही हमारी स्पार्क के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, इस निमित्त भी भ्राता जी के साथ बहुत ही नजदीक के संबंध रहे हैं। दीदी जी
ओम शांति। हमारे सब आदरणीय भैया और हमारे आदरणीय बहनों को और आप सबको हमारा नमन है, जिनकी महिमा स्वयं परमपिता करते हो, परमपिता को हो, जिनकी सेवाओं का निरंतर ध्यान परमात्मा रखता हो, ऐसी महान हस्ती का गुणगान हम किन शब्दों से करें। भ्राता जी का के आगे बहुत ही आदर्श है, ये शब्द भी छोटा है, लेकिन हमने जो देखा सदैव भ्राता जी सदा अथक निरंतर आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार और मुरली के प्रति उनका जो प्यार, उनकी जो एक्यूरेसी उसको जीवन में लाने में और प्यारे बाबा के महावाक्यों की गहराइयों तक जाकर के हम सबको उसके राज समझाते हुए उसको सहज करने की जो तरीका थी, और जब भी हम उनके साथ बैठते थे भ्राता जी बाबा की जो शिक्षाओं को वर्णन करते थे और उसे मुझे ये भासता था कि इतना भगवान के साथ नजदीक और भगवान के साथ इतना अधिकार और इतना जैसे बाप बेटे का, मैं कहती थी भ्राता जी सदैव आप जो इतने प्रश्न पूछते हैं बाबा को और बाबा इतना प्यार से आपको हर बात का जवाब देते हैं, भ्राता जी हंस के इतना ही कहते, ये बाप बेटे का बीच में मुलाकात है, कुछ भी भ्राता जी कहे बाबा उसके लिए हाँ करते, और भाई साहब की एक बात सदैव दिल को छूता है कि बाबा सारे यज्ञ में मुझे एक को कहा था कि बच्चे आप यज्ञ की जो भी लीगल बातें हैं, यज्ञ को जो रक्षा करना है, यज्ञ को वो चरम सीमा में लेके जाना है आपको, उसके लिए कभी मुरली मिस करना भी पड़े बाबा सिर्फ आपको छुट्टी देता है, लेकिन भ्राता जी कहते थे जब से आया हूँ इसी दिन तक मैंने कभी भी मुरली मिस नहीं किया है, मुरली सिर्फ मिस करना ही नहीं लेकिन उसको फिर से उनकी गहराइयों तक जाकर के उसका हर कदम में आचरण जो है, उनकी जीवन भले नाम के लिए प्रवृत्ति का था लेकिन निरंतर पर वृत्ति में रहना, उन सब बातों से न्यारे रहना और सिर्फ बाबा के शिक्षाएं और आदर्शों को जीवन में लाने की जो लक्ष्य था वो भ्राता जी में हम सब हर कदमों में देखे, और कितना वफादार और हर कार्य के प्रति उनकी निष्ठा, उनकी सत्यता जो हम सबको हर बात में उन लॉस के ऊपर चलाना, ये सारी यज्ञ में सबके दिलों में ये छाप है, और उनकी जो मिसिंग है वो सिर्फ यज्ञ में नहीं सारा देश विदेश के सारे ब्राह्मण परिवार को है जो दिल से भ्राता जी के लिए वो मिसिंग, और उनको जो याद करना, उनकी बातों को याद करते हुए जीवन में चलने की जो संकल्प लेते हैं वो छोटी बात नहीं। इसलिए एक ही ये बड़ी ही इतनी श्रेष्ठ आत्मा है, महान विभूति है, जो जाने के बाद भी दादी जी ना बाबा को इनकी जरूरत है यज्ञ को और आगे ले जाने के लिए। प्राता जी गए नहीं तो रॉकेट स्पीड में सारी सेवाओं को, और स्पार्क के लिए मैं एक उनकी जो आशा बोलते हुए मैं समाप्त करती हूँ। प्राता जी सदैव कहते थे स्पार्क सिर्फ स्पार्क न रहे, फ्लेम और ज्वाला के रूप में सारे विश्व में बाबा के नाम रोशन करे। और बाबा ने जो भी ज्ञान और विद्या योग की बातें है उसको सिर्फ हम अनुभूति के आधार से नहीं, लेकिन उन अनुभूतियों को एक साइंटिफिक अप्रोच देते हुए दुनिया के आगे रखना है, गवर्नमेंट के आगे रखना है, जो गवर्नमेंट या दुनिया कुछ भी कह न सके कि ये परमात्म ज्ञान और परमात्म योग से ये जो प्राप्तियां है ये सच है। इतना कहते हुए मैं अपनी बातों को विराम देती हूँ। ओम शांति।
भगवान के अति समीप इतना अधिकार का संबंध, ये सचमुच कुछ ही आत्माओं को प्राप्त होता है। और भ्राता जी ने वो अधिकार अपनी योग्यताओं से, अपने प्यार से प्राप्त किया था। नवीनताएं नित्य नए उनके दिमाग में आते रहते थे और वो उन्हें कार्यान्वित किया करते थे। उन्हीं में से एक था गॉडलीवुड स्टूडियो, कि हम बाबा को संसार के कोने कोने तक पहुंचाएं। गॉडलीवुड के बारे में और साथ ही भ्राता जी के अंग संग के बारे में मैं समझता हूं कि हमारे परमादरणीय भ्राता हरिलाल जी से अच्छा और कौन जान सकता है। आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं गॉडलीवुड स्टूडियो के, और 50 वर्षों से भ्राता जी के बहुत करीब मैं कहूंगा अंग संग रहे हैं। उनसे भ्राता जी के अनुभव सुनेंगे।
ओम शांति। भाई जी की कमेंट्री अभी सुन रहे थे, अभी भी दिल मानता नहीं है कि भाई जी चले गए, हमारे बीच ही है। 1965 की बात है, मातेश्वरी जी उनके घर में ठहरे हुए थे। दादी ब्रिजेंद्रा जी जो हमारी आध्यात्मिक माँ थी, उन्होंने गणपत भाई के साथ मुझे रमेश भाई के घर में 65 के अप्रैल मास में भेजा था। मातेश्वरी जी वो उनका लास्ट दौरा था बॉम्बे का, उनके बाद वो बॉम्बे नहीं आए और फिर उनका अव्यक्त देहावसान हुआ था। 65 से ये संबंध शुरू हुआ। रमेश भाई जी, शांता माता, डॉक्टर अनिला बेन, छोटी मंजू बेन और उषा बेन 28 जनवरी को 2000 साल 16 तक ये कारवां चला और फिर पूरा हुआ। कुछ बातें यादें हैं उसके पहले, जैसे अंबिका बेन ने कहा कि ये गुणानुवाद हम उनका करने बैठे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। मैं एक ही बात कहूंगा उनके लिए, शास्त्रों में जो दधीची ऋषि का उल्लेख है वो मुझे लगता है वो रमेश भाई का उल्लेख था, और साक्षात दधीची ऋषि हमारे बीच थे, जो शुरुआत से अंत तक अपनी हड्डी हड्डी उन्होंने यज्ञ को स्वाहा कर दी। सारा परिवार तन मन धन से अर्पित हो गया, समर्पित हो गया, एक आदर्श परिवार बन गया। कई बार सोचता हूं मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं, मम्मा को देखा, बाबा से पालना ली, दादियों की छत्र छाया मिली और भाई जी का साथ मिला। बचपन से मेरा कारोबार शुरू हुआ, आज मैं 65 प्लस हूं। भाई जी मेरे साथ एक फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड के रूप में रहे। खलील जिब्रान का नाम तो आपने सभी ने सुना होगा, उन्होंने कहा था आदर्श ऐसे व्यक्ति को बनाना जिसमें तीनों गुण हो, ड्रामा ने दादियों के कारण, बाबा की छत्र छाया के कारण मेरे जीवन में ये सत्य पुरवार हुआ। भाई जी हमारे फ्रेंड रहे, फिलोसोफर भी बने मेरे लिए और गाइड भी बने। बचपन से शुरू हुआ, युवा पास हुआ, बड़े हुए और 60 प्लस बने। उन्होंने सारी चीजों अपने साथ शेयर किया, मुझे अपना बनाया और अपना बना के साथ में लेके चले अंत तक। मादानी में रहने वाले को सभी को ख्याल होगा, 3 बजे फोन करते थे, अरे हरिलाल अभी तो आओ, भूख लगी है, साथ में भोजन करेंगे। लास्ट 6 साल हमने यहीं साथ में जब ही थे भोजन करते थे दोनों टाइम। तो इस प्रकार का संबंध उन्होंने निभाया, ये बहुत कम आत्माएं होती है। भाई जी को सभी एक अकाउंटेंट के रूप में, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर के रूप में या ऑडिट के रूप में देखते हैं, ऑडिटर के रूप में मैं कहूंगा उनसे वो अधिक थे। एक कलाकार थे, गीतकार थे, संगीतकार थे, लेखक थे और उनसे भी आगे बढ़े तो एक शिल्पी थे। शिल्पी जिन्होंने कईयों के जीवन को संवारा, आज वो सभी एक अनुभवी बनकर यज्ञ को अभी उनकी दिशा अनुसार आगे चलाएं, यही उनकी प्रेरणा है। कई बार मुझे सोच चलता है कि भाई जी ने क्या क्या नहीं दिया और क्या क्या दिया। मेरे जीवन में नहीं देने की लिस्ट में कुछ भी नहीं आता है। उनका ह्यूमर माने हंसी मजाक का क्षेत्र इतना बड़ा था। स्टूडियो के निर्माण में हमें जाल मिस्त्री का सहयोग था। जाल मिस्त्री रेगुलर आते थे, हम भोजन साथ में करते थे। एक दिन जाल मिस्त्री ने स्टूडियो बनने के बाद ऑपरेशन के रूप में देखा, फिर रमेश भाई को बोला आके, भाई जी मैं आज आपको हेड्स अप करने आया हूं और कहने आया हूं कि आपने इतना अच्छा अपने आप का फॉलोअर चुना, बनाया और उनको सौंपा है जो पूर्ण रूप में है, मतलब फॉलो कर रहा है आपको। रमेश भाई ने कहा, नहीं हरिलाल मुझे कभी भी फॉलो नहीं कर सकेगा। और जाल मिस्त्री को वंडर लगा, ऐसे कैसे हो सकता है। बोला, नहीं वो संपूर्ण फॉलोअर है आपका। बोला, कभी भी नहीं बन सकता। अभी आप सोचेंगे भाई जी ने हंसी मजाक की थी, बहुत समझने की बात है, मगर सबके साथ मैं ये शेयर करता हूं। उन्होंने कहा, हरिलाल को यदि मुझे मेरा 100% फॉलोअर बनना होगा तो अभी उसको शादी करनी पड़ेगी, वो शादी नहीं कुमार है। वो जाल मिस्त्री कहे, फंस गए हम दोनों, क्योंकि जाल मिस्त्री भी कुमार और मैं भी कुमार। बोला, नहीं बन सकता हरिलाल 100% फॉलोअर। ये इनकी ह्यूमर थी, ये अपने बनाने का एक तरीका था। बहुत कुछ बातें हैं किंतु आगे लिस्ट लंबी है। रूपेश भाई नजर देख रहे हैं और मुझे भी लगता है कि हर एक का अपना अनुभव होगा, इच्छाएं होंगी। बहुत कुछ स्मरण है, बहुत कुछ बातें हैं, क्या क्या शेयर करूं क्या नहीं करूं। मुझे ऐसा लगता है कि जो उन्हें बहुत पसंद था ना, वो चीज कहकर मैं मेरे वाणी को विराम दूंगा। एक बहुत अच्छी गजल है, उसकी चंद पंक्तियां मैं गाऊंगा। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप सी तुम गना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, हमने क्या खोया हमने क्या पाया, हमने क्या खोया हमने क्या पाया जिंदगी धूप सी तुम गना साया तुमको देखा तो ये ख्याल आया हम जिसे गुन गुना नहीं सकते हम जिसे गुन गुना नहीं सकते वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया जिंदगी धूप सी तुम गना साया तुमको देखा तो ये ख्याल आया भाई जी की बहुत कुछ संकल्प बहुत कुछ आशाएं और प्लान थे मैं अपने आप में ये संकल्प करता हूं और आप सबका सहयोग मांगता हूं कि हम आगे चलकर वो सब पूरी करेंगे वही सबसे श्रेष्ठ उनको श्रद्धांजलि होंगी ओम शांति
खूबियों की आप खान थे कैसे मैं गिनाऊं आपकी विशेषताएं अपरंपार थीं शब्द कहां से लाऊं निःशब्द हो जाते हैं हम जब प्राता जी के बारे में सोचते भी हैं तो ऐसे छायादार वृक्ष जिसने फल दिया अनेक अनेक आत्माओं को छाया प्रदान किया और प्राता जी कह रहे थे कि वो कलाकार थे गीतकार थे शिल्पी थे क्या क्या नहीं थे तो मैं अब सतीश भाई जी को जिन्होंने अपने गीत में भी ये कहा कि गीत की प्रेरणा उन्हें भ्राता जी से प्राप्त हुई सतीश भाई से चाहूंगा कि अपने अनुभव हमारे सम्मुख रखें सतीश भाई जी आर्ट और कल्चर विंग के मधुबन कोऑर्डिनेटर हैं आप जानते हैं और लगभग 6000 से भी ज्यादा गीत आप लिख चुके हैं भ्राता जी के लिए भी जो सुंदर गीत आपने लिखा उसके लिए हम आपके आभारी हैं सतीश भाई जी
ओम शांति आप अपनी खूबियों से याद हमको आएंगे यज्ञ रक्षक आप सा हम कहीं ना पाएंगे बाबा दादी सारे ही आपकी महिमा गा रहे आपकी सेवाओं का वर्णन हम कर पाएंगे आपकी सेवाओं का वर्णन हम कर पाएंगे सब बहुत अच्छी अच्छी बातें और अनुभव सब शेयर कर रहे हैं वो तो एक ऐसा महासमंदर है जिसमें उतरें तो किधर से उतरें और पहुंचेंगे तो कहां पहुंचेंगे इसलिए मैं तो यही कह रहा हूं कि आज इस पार्टिकुलर्स जितने बैठे हैं आप सब ये उनकी ही खोज है एक प्रकार से अगर स्पार्क विंग और इन सब सेवाओं के जनक कहा जाए उनको तो अतिशयोक्ति नहीं होगी इसलिए हम सब आदरणीय भ्राता जी को याद कर रहे हैं सहसा होता विश्वास नहीं तुम अभी यहां थे अभी नहीं दिल को तो है बस यही यकीन तुम यही रहे तुम यही यही तुम यही रहे हो यही यही बार बार कहता है दिल कि तुम यहीं पर हो एक छोटा सा वाकया यूं तो भाई जी के साथ बहुत काफी अरसे से जुड़ा हूं जब 1983 में माउंट आबू में कॉन्फ्रेंस हुई उन दिनों में मैं गीत वगैरह तो गाया करता था लगभग 5-6 वर्ष पहले से ही लेकिन दादियां आ रही हैं दीदियां जा रही हैं कुछ छोटे मोटे प्रोग्राम होते थे गाया करता था मैं एक दिन भाई साहब ने कॉन्फ्रेंस होने वाली थी जूरिस्ट विंग की तो कहा सतीश तुम गीत लिखोगे हमारे कॉन्फ्रेंस के लिए ये पहला मौका था जब ऑफिशियल मैंने गीत किसी कॉन्फ्रेंस में और वो भी जूरिस्ट विंग के लिए गाया होगा क्योंकि मैं देख करके ये काले कोट वालों को देख करके बहुत डर जाता था कि मैंने कि भाई इतने और भाई जी हमारे बड़े इतने बड़े थे मैं पहली बार उनसे रूबरू ऐसे हुआ था तो उन्होंने कहा गीत बनाओ और बन सके तो और मुझे सुना देना पहली दफा किसी ने कहा होगा गीत बनाओ और मुझे सुना देना भाई साहब में बहुत बड़ी खूबी थी एक एक को तराशा ढूंढा निकाला और बनाया और हिम्मत भरी और उनकी परीक्षा भी ली इसलिए भाई साहब बड़े सख्त दिखाई पड़ते थे लेकिन उन्होंने जिसको बनाया और जितना बनाया जैसा बनाया वो कभी भुलाया नहीं जा सकता है तो मैंने कहा भाई कुछ करूंगा तो दूसरे दिन मिल गए और आंगन था मधुबन का कहा सतीश गीत लिखे। मैंने कहा भाई जी अभी तो शुरू किया, दो लाइन लिखा है। कहा दो लाइन ही सुना दो। मैंने उनको सुनाया, गीत था, गाते हैं हम गीत मंगल मिलन के, शुभ स्वागतम के शुभ आगमन के, गाते हैं हम गीत मंगल मिलन के। उन्होंने सुना, कहा ये कोई गीत है? ऐसा गीत होता है? ये शादी का गीत गाना है क्या? जो उन्होंने 5 मिनट तक बारिश की अहमियत अभी कभी भूलता नहीं। पहली बार ऐसा सामना हुआ था कि कोई ऐसा भी कहेगा और बड़े भाई से ऐसा सुनूंगा, पहली मुलाकात इतनी खूबसूरत। तो उन्होंने कहा कि थोड़ी देर के बाद कहा, देखा कि इसका चेहरा बेचारे एक लटक गया है और इसकी हालत खराब हो गई है, और मेरे भी पांव की धरती जो है वो खिसकती जा रही थी, लगता था कि मैं अभी यहां पर नहीं हूं। तो उन्होंने कहा अभी भी टाइम है, कल शाम को है कॉन्फ्रेंस, जरा कोशिश करो। मैं बहुत बिजी रहता था भोजन निर्माण वगैरह में दादियों के, लेकिन मैंने कोशिश किया, रात को टाइम नहीं मिला। मुझे तो वैसे ही उनका सुनकर के आधा बुखार हो गया था। दूसरे दिन सवेरे सवेरे 2 बजे आंख खुलती है और टेबल लैंप जला करके मैं बैठता हूं और एक गीत लिखता हूं। लिखने के बाद पहले रफ लिखा, फिर फेयर किया, कागज में लिख करके तैयार करके, मैं विशाल भवन का पहला रूम था, मैं वहां जाके बाहर बैठ गया। 4 बजे का रिकॉर्ड बजता है, रमेश भाई उषा बहन बाहर निकलते हैं योग के लिए और देखते हैं सामने बेचारा बैठा हुआ है, इसके ऊपर क्या बीती होगी, ये रात को कैसे सोया होगा, कब लिखा होगा, कब बैठा। सचमुच पहली लाइन पढ़ी उन्होंने और इतना अच्छा लगा उन्होंने कि पहली दफा किसी को इतना प्यार किया होगा, इतना प्यार गले से लगा के। हालांकि उसको मैंने गाया, पहली बार मैंने गाया ग्रुप लेकर के, इंस्ट्रूमेंट लेकर के, पहली दफा, आप समझ सकते हैं क्या गाया होगा, वो तो ऊपर वाला ही जानता है। लेकिन उन्होंने इतना प्यार दिया कि वो भुलाए नहीं भूलता है। और उस लाइन क्या थी, परम न्याय कर्ता के दर न्याय के दाताए हैं, नीति नियंताए हैं, नीति निर्माताए हैं, नीति नियंताए हैं, नीति निर्माताए हैं। और वो पूरा 4 अंतरे का, 5 क्रॉसलाइन का एक लंबी सी खर्रा, एक लंबा सा गीत कविता जैसे लिखा था कविता नुमा, उसको देखा, गाया, सब कुछ आया। लेकिन उस दिन से मुझे आज मैं जिस मुकाम पे पहुंचा हूं, मैं सारा श्रेय अपने प्यारे भाई को देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
सतीश भाई जी, आपने 5 मिनट दादाजी से सुना। पिछले साल की मुझे याद आ गई, इसी मंच पे दादाजी के साथ थे 1.5 घंटे तक, भ्राता जी के साथ रहे, तो भ्राता जी के लव और लॉ दोनों की ही बातों को देखने का, सीखने का बहुत ही भाग्य मिला। और अंत जैसे आप कहते हैं कि सिखाया और साथ ही प्यार बहुत किया, उस प्यार ने हम सबके जीवन को संवारा है, तराशा है। मैं समझता हूँ हम सब इसके लिए उनके बहुत बहुत हमेशा ही आजीवन कृतज्ञ रहेंगे। अब मैं अनुरोध करूंगा सरोज दीदी से, जो दिल्ली से हमारे बीच है, स्पार्क की जोनल कोऑर्डिनेटर हैं, वो अपने उद्गार भ्राता जी के लिए, अपने अनुभव भ्राता जी के लिए हमारे सम्मुख रखेंगे।
ओम शांति। हम सभी के मुख से सुन रहे थे कि भ्राता जी कहीं गए नहीं हैं, हमारे साथ हैं, और ये एक्सपीरियंस हम सभी कर रहे हैं। और साथ में मुझे साकार बाबा जब अव्यक्त हुए थे, वो पंक्तियां याद आई। बाबा के अव्यक्त होने के बाद जब बाबा का भोग ऑफर किया गया ऑलमाइटी को, तो अव्यक्त बाप दादा दादी के तन में प्रवेश हुए, आदरणीय गुलजार दादी, और उनसे बहुत सारे बच्चों ने प्रश्न किए कि बाबा आपने ये कहा था कि दुनिया में गुरु अनेक हैं, सतगुरु एक है, और गुरु तो छोड़कर चले जाते हैं, पर सतगुरु अंत तक तुम्हारा साथ देगा। बाबा आप भी तो छोड़कर चले गए
हमारे बीच। दीदी आपका रोकना चाहूंगा, समझ आते हैं। हमारे बीच आदरणीय दादी जी आ गए हैं, सभी खड़े होंगे अपने स्थानों पर। परम आदरणीय आज की इस सभा में दादी जी की उपस्थिति इस सभा को संपूर्ण बनाती है। जैसे दादी जी हमेशा ही, उनकी उपस्थिति से हम सबके मनों को, दिलों को आलोकित करती हैं। भ्राता जी के लिए भी दादी जी के मुखारविंद से हम सुनेंगे। दादी जी अभी भ्राता रमेश जी के लिए श्रद्धांजलि की, सभी अपने अनुभव दे रहे हैं भ्राता जी के साथ का। अभी सरोज दीदी जो दिल्ली से आई हुई हैं, वो अपना अनुभव भ्राता जी के साथ शेयर कर रही हैं। दादी दादी आप सुनेंगे। दादी जी का हम सभी पुष्प गुच्छों से आज की सभा में अभिनंदन करेंगे। हंसा दीदी भी हमारे साथ हैं, हंसा दीदी का भी हम पुष्प गुच्छों से स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। दादी सरोज दीदी रमेश भाई जी के साथ का अनुभव शेयर कर रहे हैं।
परमादरणीय दादी जी की अनुमति लेकर मैं सुना रही थी, जैसे साकार बाबा बाद में अव्यक्त रूप में बाबा ने बच्चों के साथ रिहान की कि बाबा साथ थे, हैं और रहेंगे, तो कहा बाबा आप शिव बाबा परम धाम में, आप सूक्ष्म वतन में आप हमें कैसे साथ देंगे। तो बाबा ने कहा कि बाबा बाप दादा इसी तरीके से आपसे मिलते रहेंगे, और केवल बाबा ने कमरा शिफ्ट किया है, बाबा कहीं गया नहीं है, मूल वतन का गेट बाबा आपके साथ ही खोलेंगे, ये बाबा का वायदा है। और ऐसा भी क्यों किया, क्योंकि देह का बंधन था, पूरे विश्व तक बाबा का संदेश पहुंचाना था, इसलिए अब सेवा बहुत फास्ट गति से होगी और विश्व में चारों तरफ बाबा की सेवा केंद्र खुलेंगे और बाबा सूक्ष्म रूप से सारे विश्व की सेवा करेगा। वही बात हमें लग रही है कि आदरणीय भ्राता रमेश जी आज सूक्ष्म रूप से इतनी विशाल सेवा जहां कहीं बुलाएं वहां उपस्थित होकर करेंगे। आप सभी इस बात के लिए सहमत हैं? हाथ उठाएंगे जरा। थैंक यू। और इसीलिए बाबा का जो कार्य है वो और तीव्र गति से चलेगा, क्योंकि उन्होंने लीडरशिप का मॉडल हम सबके सामने रखा। जो भी विंग्स उन्होंने संभाले समान वह बनकर उन्होंने अपने सामने ही लीडर्स को तैयार किया ताकि बाबा का कार्य निरंतर चलता रहे, और बहुत अच्छी तरह से उनके रिप्रेजेंटेटिव बाबा का कार्य देख रहे हैं। बहुत जरूरी बात, इतना बड़ा वित्त मंत्रालय पांडव सरकार का, पांडव गवर्नमेंट का, जिनको संभालने की जिम्मेदारी बाप दादा ने, आदरणीय दादियों ने रमेश भाई के ऊपर रखी थी, उन्हें बखूबी इसको संभाला। इतना ही नहीं बल्कि ऑनेस्टी से और नियम विधि विधान के अनुसार, मेरा एक अनुभव मुझे याद है कि मुझे कुछ यज्ञ सेवा के लिए भ्राता जी से मैंने कुछ रिक्वेस्ट करा फोन पे, कुछ जरूरी बात थी, तो भ्राता जी ने मुझे ये कहा कि सरोज बहन, मुझे कोई मुश्किल नहीं है, मैं सेवाधारी हूँ, दादियों को बाबा निमित्त बनाया है, अगर दादियां इस बात के लिए कहती हैं तो मैं ये करने में मुझे मुश्किल नहीं है, आप दादी जी से जरूर कहें। तो मैं सोचती थी कि अभी गुलजार दादी या बड़ी दादी, उनसे कैसे मुलाकात हो। मैंने बाबा को याद किया, जितना ही उन्होंने मुझे कहा उतना वो कंसर्न भी थे कि कार्य रुकना नहीं चाहिए। मेरा दिल उस समय भर आया। 10 मिनट के बाद भाई साहब ने फोन किया, सरोज बहन जो आपने कार्य कहा था उसको आप कर सकती हैं। उन्होंने मुझे आज्ञा दी और साथ में मेरे सामने रखा कि किस तरीके से निरहंकारिता का उन्होंने पाठ बजाया, दादियों से उन्होंने कंसल्ट करके कैसे मुझे कहा होगा ये तो वह जाने। और उसके बाद उन्होंने कहा कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। मैंने कहा भाई साहब मुझे ना थोड़ा सा आपसे डर लगता है। तो उन्होंने कहा कि शिव शक्तियां डरती है क्या, बाबा ने आपको शिव शक्ति बनाया है, आपको निमित्त रखा है, जो बात हो आपको बतानी चाहिए। और इतना उन्होंने मुझे स्नेह दिया मैं उसको भुला नहीं सकती। और मुझे मालूम है कि जब भी हम भ्राता जी से मिलते थे एक बार कुछ कहते थे थोड़ा स्ट्रिक्टली, लेकिन बाद में वो कार्य कर भी देते थे लव एंड लॉ का बैलेंस रखते हुए। तो मैं इतना ही कहूंगी कि उन्होंने यज्ञ में तन मन धन और संबंध सब सफल किया, और यही कारण है कि जो भविष्य में जो देवताएं थे श्री लक्ष्मी श्री नारायण, उनको तन मन धन और संबंध का सुख प्राप्त था। जिन्होंने इस समय सफल किया भविष्य में अवश्य उन्हें चारों ही सुख प्राप्त होंगे और विश्व महाराजन बनेंगे। अब मैं यही कहना चाहूंगी कि जितना उन्होंने आदर्श हम सबके सामने प्रस्तुत कर ब्राह्मण परिवार के लिए विश्व के लिए हाथ रचा और उसका हम अनुसरण करेंगे, जो उनकी आशाएं थी हम सब उसका पालन करेंगे और बाबा के प्रत्यक्षता की पताका विश्व में फहराएंगे, यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ओम शांति। एक बार मैं ये कहूंगी, अनुरूप मराठे जी भी हमारे साथ में थे सेवाओं में, उन्होंने भी बखूबी पुणे में बहुत अच्छा सेवा का रोल अदा किया, उनके लिए भी मेरी श्रद्धा सुमन समर्पित है। ओम शांति।
भ्राता जी ने जो दीप जलाया था उस दीप को, स्पार्क को फ्लेम बनाना वो बार बार कहा करते थे, उसकी जिम्मेवारी सचमुच अब हम सबके ऊपर है। आदरणीय ललित भाई भी निरंतर उनके साथ रहे हैं। आप ब्रह्म कुमारी के सेक्रेटरी हैं, अकाउंट्स का सारा ही कार्य अभी आप देख रहे हैं, और ये कार्य ऐसा है जैसे सरोज दीदी कह रही थी कि बाहर से सख्त लेकिन अंदर से बहुत नर। सभी इस बात का अनुभव भ्राता जी से किया करते थे। ललित भाई जी ने क्या अनुभव किया उनके मुखारविंद से सुनेंगे।
आदरणीय दादी जी एवं मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ भाई बहने और सभा में उपस्थित सभी स्पार्क विंग से संबंधित विशेष सेवा में संलग्न भाई बहने, 1998 में अहमदाबाद में एक बड़ा मेला हुआ था 18 दिन का, और उसमें अकाउंट्स की सेवा में मुझे भी रोल मिला था, तो मैं सुख शांति भवन जाकर वो सेवाओं देखता था। और उस समय आपको पता हो एसटीडी चार्जेस काफी हाई होते थे, तो शाम को या रात को फोन करते थे तो 25% या 50% चार्ज में कॉल हो जाता था। तो ये सोचते थे दिन में नहीं बात करके रात में फैक्स करेंगे या रात को फोन करेंगे। तो आदरणीय रमेश भाई जी का एक बार फोन आया दिन में कि क्यों आप ये दिन में फोन नहीं कर रहे हो और रात तक इंतजार करते हो। मैंने कहा भाई साहब वो थोड़ा बचत हो जावे इसके लिए। बोले अकाउंट्स का काम, फाइनेंस का काम इतना इम्पोर्टेंट काम होता है कि उसको तुरंत करने का, दिन रात नहीं देखने का है। जब भी काम सामने आवे तुरंत कर लेने का। ईमेल से, उस समय ईमेल का नहीं था, तो फैक्स से, फोन से, चिट्ठी लिख के, जैसे भी हो, लेकिन कोई भी काम पेंडिंग नहीं रखने का, उसको इमीडिएट पूरा करने का। और ये जब से भ्राता जी के संपर्क में आए, ये देखा कि भाई साहब को किसी भी कार्य के लिए संदेश दिया हो आधे घंटे, एक घंटे, दो घंटे में तो उनका रिप्लाई आ जाता था, अभी तो ईमेल से। इतना फास्ट भाई साहब डिसीजन लेके ये इस यज्ञ के कारोबार को किया। वो कहते थे कि रोज के मुझे 150 जो भी ईमेल आते हैं, अगर एक दिन भी मैंने रिप्लाई नहीं किया तो दूसरे दिन डबल रिप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए वो तुरंत का तुरंत काम करने का, ये एक भाई साहब, और भाई साहब साकार बाबा का जो अनुभव थे वो बताते थे कि साकार बाबा ने खास उनको कहा था कि बच्चे यज्ञ का काम तुरंत होना चाहिए। दूसरा एक अनुभव याद आता है 2007 में, उस समय मैं अहमदाबाद में सेंटर पर रहता था और यज्ञ में सेवार्थ आता जाता था। तो भाई साहब ने ब्रह्मा कुमारीज को रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बनाने की सेवा मुझे सौंपी थी, जो मैंने पहले कभी किया नहीं था, कोई अनुभव नहीं था। और मैं उस समय तो प्रैक्टिस में भी नया नया था, इतना ज्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन भाई साहब ने यह सेवा सौंपी जो चीफ कमिश्नर के पास जाके काम करवाना था जोधपुर से। लेकिन भाई साहब ने विश्वास रखा, आदरणीय जानकी दादी जी उस समय 2007 में ही उन्होंने मुझे आशीर्वाद देके जोधपुर भेजा। और वो काम इस प्रकार से हो गया कि खुद भाई साहब को आश्चर्य था कि इतना जल्दी और ऐसे कैसे काम, मतलब जल्दी से हो गया। तो परखने की शक्ति जो थी भाई साहब की वो बड़ी गजब की थी। जैसे हरिलाल भाई जी का बताया अभी कि गोडलीवुड स्टूडियो का, भले हरिलाल भाई जी को उसका पहला कोई खास अनुभव नहीं था स्टूडियो का, लेकिन जैसे स्टूडियो का जो सेवा मिली और साथ में शक्ति भी दी, और किस प्रकार से आज एक पूरे विश्व में एक बहुत अच्छा, जिसको कहें लेटेस्ट और एक यादगार के रूप में ऐसा स्टूडियो बन गया और वो सेवाएं चल रही है। तो ये भाई साहब की बहुत बड़ी खूबी थी जो परख कर तुरंत सेवा में लगा देते थे और साथ में शक्ति देते थे कि वो सेवा अच्छी प्रकार से हम कर सके। भाई साहब यज्ञ में नवीनतम साधनों का उपयोग करने के बहुत पक्षधर थे। यज्ञ में कितने आविष्कार हुए होंगे, नई नई खोजें हुई हैं, सेवाएं शुरू हुई हैं, वो भाई साहब के प्रत्यक्ष सहयोग से, या तो उनके विचारों से, या किसी को विचार आया तो भाई साहब ने उसको प्रमोट किया और उसको सपोर्ट किया और आगे बढ़ाया। उसके कारण यज्ञ में अनेक प्रकार की नई नई सेवाएं शुरू हुई हैं। उसके बाद एक और मैं अनुभव सुनाना चाहूंगा कि भाई साहब सेवा के प्रति कितने समर्पित थे। 2 साल पहले की बात है, मुंबई में बीएसईएस हॉस्पिटल में छोटा सा एक भाई साहब पर ऑपरेशन हुआ था, तो मैं भी वहां गया हुआ था। भाई साहब को ऑपरेशन थिएटर से जब बाहर लाए, आईसीयू में शिफ्ट किया, तो मैं भी अंदर गया था भाई साहब से मिलने के लिए। और वो जो एनेस्थेसिया का असर था वो थोड़ा कम हुआ था, और भाई साहब जैसे थोड़ा सा बात करना शुरू किया था और तुरंत मुझे उसी आईसीयू में, अभी आए ही थे ऑपरेशन थिएटर से, और मुझे कहा कि फलाने भाई को फोन करके बोल दो कि उनका जो है वो काम हो जाएगा और आप इस प्रकार से उनका काम करवा देना। माना आप देख सकते हैं कि वो उनके हर संकल्प में बाबा की सेवा रहती थी और उस सेवा को कैसे समय से पूरा करना है। तो ऐसे अति आदरणीय और विशेष हमारे मार्गदर्शक, ऐसे प्रेरणा मूर्ति आदरणीय भाई साहब के संग जो रहने का सौभाग्य मिला, जो उन्होंने हमें सिखाया, उसके हम सदा ऋणी रहेंगे। और एक लंबे सफर पर भाई साहब गए हैं, तो दो लाइन कह के मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। जो सफर की शुरुआत करते हैं, जो सफर की शुरुआत करते हैं, वही मंजिलें पार करते हैं। अच्छे इंसानों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं।
हमारे बीच दादी जी हैं, तो हम सबकी दिली इच्छा है कि दादी जी से हम सुने। इसीलिए जो हमारे अन्य भाई बहने हैं, अनुभव के लिए एक एक मिनट का वक्त लेके जरूर अपना अनुभव रखें, फिर हम परम आदरणीय दादी जी से सुनेंगे। लता बहन जी से मैं अनुरोध करूंगा कि संक्षेप में बाबा राधा जी के साथ के जो एक्सपीरियंस है वो रखेंगे। लता दीदी,
ओम शांति। भाई जी के साथ का अनुभव एक मिनट में तो शेयर करना पॉसिबल ही नहीं है। वो तो सागर को घाघर में भरने के से भी बहुत ज्यादा बड़ी बात हो जाएगी, मगर फिर भी इतना कहूंगी कि भाई जी गुणों के खान थे और उनके साथ अंग संग रह के जो सेवाएं की और जो अनुभव किया और जो उनसे सीखा वो बहुत ही गहरा है। वो अपने जिसके भी साथ सेवा के ऊपर कारोबार देते थे तो उसके ऊपर फुल फेथ रखते थे और फेथ से वो कारोबार देते थे। एक ही एग्जाम्पल दूंगी, वैसे तो बहुत सारे अनुभव हैं क्योंकि मेरा फील्ड है लौकिक दुनिया के लॉ के साथ में, मगर भाई साहब ने मुझे कि लौकिक दुनिया के अंदर भी गॉडली लॉज को कैसे यूज करना चाहिए और तुम्हारे ऊपर उसका इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए उस परिस्थिति उस वातावरण का, उन्होंने मुझे वो सिखाया कि कैसे लॉजिक के साथ में अगर तुम रहोगी तो लॉ और लव का बैलेंस करते हुए गॉडली और वर्ल्डली लॉज का भी बैलेंस कर सकोगी। तो एक केस आया था जो बहुत ही डिफिकल्ट भी था और जिसमें मतलब कुछ सार भी नहीं बचा था, फिर भी भाई साहब ने कहा कि ये केस आपको देखना है। तो मैंने यही कहा कि भाई साहब अब इस केस में तो कोई दम ही नहीं बचा है, तो भाई साहब ने कहा कि आपके पास आया है तो कुछ हो सकता है। तो बस इतना उनका कहना था और मुझे एकदम जैसे टचिंग हुई कि भाई साहब को जब इतना विश्वास है तो मैं ये केस लूं। और आपको जान के वो हर्ष होगा कि वो केस जो बहुत ही दुनिया के हिसाब से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था वो पॉसिबल हुआ और उस केस में हम जीत गए थे। एक ही केस ये शेयर करते हुए उनका कि इतना वो विश्वास से अपने साथियों के ऊपर रखते थे और विश्वास से कार्य देते थे तो उस कार्य में 100% सफलता मिलती थी। अगर उनके उस विश्व उनका जो हमारे ऊपर फेथ था उसको हम अनुभव करके उस सेवा को करते थे तो 100% सफलता मिलती थी। बहुत कुछ है उनके लिए कहने के लिए, मगर यहीं अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम शांति।
शुक्रिया लता दीदी। नागेश भाई जी हमारे साथ हैं जो भ्राता जी के अंग संग रहे हुए हैं, बहुत करीब से उन्हें देखा है, तो मैं नागेश भाई से अनुरोध करूंगा कि नागेश भाई अपने अनुभव रखें। उससे पहले 7:30 बज गया है, हम सब ट्रैफिक कंट्रोल करके बाबा की याद में बैठेंगे फिर श्रद्धांजलि के इस काम को।
ओम शांति। इस शुभ संध्या समय में इन महान विभूतियों को जो श्रद्धांजलि समर्पण करने का एक सौभाग्य जो मिला है, बहुत अच्छी घड़ी है ये। और ऐसे रमेश भाई के साथ करीबन 40 साल पहले की संबंध है। 40 साल पहले मैं छोटे थे, सेंटर में रहते थे और सेंटर के कारोबार के संबंध जो बहनों को बॉम्बे आना जाना पड़ता था रमेश भाई के पास वो सेंटर के कारोबार के लिए, तो बहनों ने मुझे साथ लेके आते थे और कभी घर में कभी ऑफिस में बॉम्बे में मिलना जुलना होता था। और तब से देखते थे मैं कई बार साल में 2-3 बार तो आना पड़ता था और रमेश भाई का नजर मेरा ऊपर पड़ी और मुझे उस समय से उन्होंने आगे बढ़ाने का कोशिश किया, थोड़ा कुछ जवाबदारी देने का, कुछ आगे बढ़ाने का, कुछ कारोबार में इंटरफेयर कराने का, कैसे कारोबार करते ये सब सिखाने का, ये सब सिखाने का मतलब इसको आगे रखने का ये किया। सेंटर में भी कुछ कारोबार होते तो मेरा नाम लेके मुझे कारोबार सौंपते थे, इनको बुलाओ भेज दो। कभी कभी मैं अकेला उनके पास आकर के कुछ कारोबार देके जाते थे, कुछ कहते तो लेके जाते थे, समाचार लेके जाते थे। इस प्रकार से संबंध जुड़ा। और इसके साथ साथ मैं संकल्प या स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि आगे चल करके इन महान आत्माओं के साथ मुझे सेवा रहने का, सेवा करने का सौभाग्य प्रदान होता है करके। लेकिन आज से 30 साल पहले जैसे मधुबन में आए, मधुबन आकर करीब 30 साल हो गए, 30 साल में मधुबन में आया तो सेवा तो करना था। फिर दादी जी ने, और मैंने एक देखा कि दादी जी के साथ रमेश भाई का संबंध, जो प्रकाशमणि दादी था उनके साथ भी एक संबंध कैसे है, और आज जानकी दादी भी है उनके साथ भी उनका संबंध कैसे है, इसको वर्णन कर नहीं सकते। और उस समय दादी जी के साथ इतना घनिष्ठ संबंध थे, और उस समय दादी को भी एक समस्या था कि रमेश भाई के साथ सेवा करने का और रमेश भाई के साथ कहीं भी ले जाने का, ले आने का कुछ कारोबार होता है, उसके लिए कोई भी नहीं जा सकते थे, नहीं जाते थे। अगर एक बार जाते तो रमेश भाई, भाई लोगों ने भी बताया, सतीश भाई ने बताया, रमेश भाई थोड़ा स्ट्रिक्ट था। जब स्ट्रिक्ट होने के कारण उनके पास अगर एक साथ एक बार अगर कोई किधर जाते हैं, दोबारा उनके साथ कोई नहीं जाते थे। और ये दादी जी को बहुत बड़ा समस्या था और दादी को चिंता होती थी। और उसके बाद मैं सामने मिला, फिर दादी जी ने मुझे बुलाया, दादी को क्योंकि कारोबार तो होता था, कभी उधर बाहर जाना पड़ता था, उदयपुर जयपुर अहमदाबाद वगैरह जाना पड़ता था। और दादी जी ने मुझे बुला के बोला कि नागेश भाई आपको थोड़ा मैं सेवा सौंपता हूँ, आप करोगे? मैंने दादी करूंगा, सेवा के लिए बुलाया तो आप जो बोलोगे करूंगा। फिर सेवा तो डिफिकल्ट है, सेवा तो डिफिकल्ट है, लेकिन दादी आपका ऊपर है, आपका दादी का नजरों में आप रहेंगे, ऐसे बोला। जो भी सेवा दे दो, कितना भी डिफिकल्ट सेवा दे दो मैं करूंगा। तब उन्होंने बोला कि 1.5 घंटा मुझे दीदी का कमरे में बिठाया, पांडव भवन में दीदी का कमरे में बिठा के बताया कि आप रमेश भाई के साथ सेवा करना है, रमेश भाई को संभालना है। लेकिन ये रमेश भाई करके नहीं समझना, रमेश भाई को इतना मान रखती थी, इतना स्थान दिया था रमेश भाई को, रमेश भाई मेरा एक अंक है, मैं मेरा एक अंक को आपको संभालने के लिए देता हूँ, फिर मेरा अंक समझ करके इसको संभालो। तब दादी को उसी समय मैंने प्रॉमिस किया था, दादी जब आपने कहा तो मैं जब तक रहूंगा तब तक उनका शिकायत आने आपको नहीं दूंगा। और उसके बाद करीबन 30 साल हो गया, केवल रमेश भाई के साथ इतना ही नहीं, मेरा एक सौभाग्य उनका पूरा परिवार के साथ सेवा करने का सौभाग्य मिला। उसका माता जी शांता माता थी, शांता माता के साथ भी सेवा करने का सौभाग्य मिला, और उनका उषाबेन के साथ भी सेवा करने का सौभाग्य मिला, और अनिलाबेन के साथ भी सेवा करने का सौभाग्य मिला, और रमेश भाई के साथ भी साथ रहते रहते सबका केवल सेवा करने का इतना ही नहीं, लेकिन सेवा करते करते उनका अंतिम क्रिया करने का भी एक सौभाग्य कहो या दुर्भाग्य कहो, क्या कहते हैं आप समझ सकते हैं उसको, क्योंकि सेवा भी किया। लेकिन कई बार मैं सोचता हूँ अगर मेरा लौकिक माँ शरीर छोड़ा तो भी उनका अंतिम क्रिया में मैं जा नहीं पाया था, और मेरा भाई शरीर छोड़ा तो भी उनका अंतिम क्रिया में मैं जा नहीं पाया पहुंच नहीं पाया था, और मेरा लौकिक बहन शरीर छोड़ा तो भी उनका अंतिम क्रिया में पहुंच नहीं पाया था। लेकिन रमेश भाई का जो पूरा परिवार का जो अंतिम क्रिया में जाने का इतना ही नहीं, लेकिन डेड बॉडी को चिता देने का भी एक सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था यहाँ तक उनका सेवा के लिए। और आज भी मुझे लोग पूछते हैं अभी रमेश भाई के परिवार में कौन कौन रहा, कितना लोग रहा, पहले से पूछते थे, मतलब माइनस होते होते आया। अभी रमेश भाई शांता माता भाई गई तो फिर 5 लोग रहे, फिर उषाबेन गई, उसका रमेश भाई का बहन गई, फिर मैंने बोला 4 लोग रहे, अभी उषाबेन गई फिर 3 लोग रहे, फिर मधुभाई गया फिर 2 लोग रहे, अनिला बहन चले गई, फिर अकेला रह गया, अभी रमेश भाई भी चला गया। इस प्रकार से सेवा करने का सौभाग्य मिला। और दूसरा जैसे कि उनसे बहुत कुछ सीखने का भी सौभाग्य मिला, जैसे कि हम सेंटर में सेवा करते थे, सेंटर में सेवा करना माना क्या होता है, नदियों में तालाब में जैसे कि तैरने जैसा होता है, और मुझे रमेश भाई ने एक सागर में तैरने का एक क्लास सिखाया, सागर में तैरने का, और सागर से सागर का लहरों के साथ और सागर का लहरें सागर का तरंगों के साथ जैसे सामना करने का जो ताकत मुझे दिया, और उसी के आधार पर यहाँ सेवा में उपस्थित हूँ। ओम शांति।
कितनी सुंदर बात, दादी ने अपनी आंख की तरह, मतलब जो हृदय में समाने वाली चीज हो, इतनी अमूल्य चीज जो नागेश भाई ने बताई, दादियों के मन में इतना सम्मान और प्यार आदरणीय भ्राता जी के लिए था, तो उनकी जो महत्ता थी यज्ञ में, उस चीज को हम समझ सकते हैं। और क्या गहन बातें हैं हम आदरणीय दादी जी के मुखारविंद से ही सुनेंगे। भ्राता रमेश जी जो हम सबके इतने आदरणीय हैं, जिनको हम बहुत प्यार से श्रद्धा से याद कर रहे हैं, दादी जी की पालना में वो पले हुए हैं, दादी जी ने उन्हें कितना आगे बढ़ाया है, और बहुत सारे अनुभव मुझे लगता है शास्त्र बन जाएंगे यदि हम उन सब बातों को सुने तो। और इन्हीं बातों के तो सचमुच शास्त्र बने हैं जिनकी आज यहाँ हम चर्चा सुन रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा दादी माँ से कि वो भ्राता जी के साथ के जो अनुभव हैं वो हम सबके साथ रखें। आदरणीय दादी माँ,
मैं तीन बारी ओम शांति कहेंगे, आप सब मेरे साथ कहेंगे ना, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। यहाँ मुझे पता नहीं था आप लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं, क्या कर रहे हो, नहीं पर मैं रोज आऊंगी। कितना दिन हो रहा है, कितना दिन हो रहा है,
चार दिन आना है आपको।
अच्छा, अभी तीन बारी ओम शांति क्यों कहती हूँ पहले ये बताओ। ये बाजू में मुझे ऐसा बैठा है, ये बहन बाजू में थे, इनका तो आज सुनना। अच्छा है, मैं कौन, मेरा कौन, मैं आत्मा हूँ, उसको भगवान कहता है मन मना भव। आत्मा का पहले पहले ज्ञान मन बुद्धि संस्कार, आत्मा में क्या, आत्मा क्या है, ये पांच तत्वों का शरीर है, आत्मा कोई तत्वों का शरीर नहीं है। आत्मा में पहले पहले, अच्छा अभी आप लोगों ने रमेश भाई की बातें सुनाई, मेरे पास तो इतनी अच्छी बातें हैं, जब बाबा बॉम्बे में था तभी शांता माता, बाबा मुझे प्यार करता था, तो बाहर में जो भी माताएं या भाई बाबा से मिलने चाहते थे तो उनसे पहले मैं बैठती थी, वहां लोग यहाँ करती थी, तो शांता माता ने कहा मेरे को बाबा से मिलने का है, तभी बाबा से कोई मिलता नहीं था, तो मैंने कहा अच्छा मैं बाबा को कहती हूँ। जब बाबा के पास गई तो यज्ञ सेवा अर्थ कुछ बाबा को दिया, तो बाबा ने कहा मुझे बुलाया, बच्ची ये बिट्टू है, तभी बहुत बॉम्बे में पहले पहले मैं माधव बाग में वहां भाषण करती थी, तो शांता माता ने कहा तो मेरे पास भाषण करेंगी, मैंने कहा ठीक है, भाषण किया, गई है भाई वहां, तो रमेश भाई कॉलेज से आ रहा था, अभी पढ़ाई पढ़ रहा था, तो वो तो घर छोटा था तभी, उसका बहुत छोटा था, अंदर कमरा था, बाहर यहाँ किचन था, यहाँ झूला पड़ा रहता था, वहां इसके बाप ने बैठे सभी छोड़ा था, तो मुझे पता नहीं था, पर मैं झूले में बैठी तो बहुत उनको अच्छा लगा, ये आते ही झूले में बैठी है और कुछ बैठने की जगह ही नहीं थी ना, मैं झूले में बैठी है। पहले शांता माता बहुत मेरे को देख प्यार करने लगी, मैंने कहा तो कुछ मेरे योग सेवा है, मैं शांत हूँ, जैसे अभी गीत ये बजाया शिव बोला भगवान, हमने देखा भी है पाया भी है, आप सबने क्या पाया है, देखा भी है पाया भी है, उनसे क्या पाया है, शिव भोला भगवान है भोला है, हम भी वास्तव में भोले है, हम कोई चतुर नहीं जैसे आजकल लोग बड़े चालाक होते हैं, हम नहीं जानते हैं। मेरा एक फोटो अभी सब जगह हो गया है ऐसे हाथ, तो रमेश भाई को जो बाबा से पालना मिली है वो मैंने आंखों से देखी है। पहले पहले निर्भय भाई रमेश भाई ये दोनों बॉम्बे में पैदा हुए हैं, जब मैं थी बाबा इनकी दोनों की पालना करने के लिए ध्यान खींचवा था, मैं देखती थी फिर ये ज्ञान सुनने के लिए बड़ा अच्छा ध्यान से गहराई से सुनते थे, तो मेरे को यहाँ जो बैठे है कौन जानते हैं, मैं तो इस सभा में पहला बार आई हूँ ना।
नहीं, बहुत बार आए
इस पार्क में, तो बहुत बार आए आप।
बहुत बार आए,
बहुत बार आई हूँ इसमें
इस पार्क की मीटिंग में दादी,
तो आज रमेश भाई को याद किया है ना सारे।
हाँ
ठीक भले किया भले, परंतु मैं कहती हूँ अभी हम सब अपना चरित्र हमारा ऐसा हो जो हम भी सही छोड़े तो हमारा भी कोई यादगार हो, क्योंकि मैं देखा उषा बहन को, क्योंकि जब शादी का तैयारी की थी तो बाबा के पास आए तो बाबा ने दृष्टि दी, उन दिनों में किसी ने बाबा को कहा आपके पास फिल्मी गीत बजते हैं, बाबा ने फिल्मी गीत बजते हैं, फिल्मी गीत नहीं बजाना चाहिए, तो फिर उस साबन ने ड्यूटी उठाई अच्छे गीत बनाने की, ये सेवा उसने ऐसी की हमारे दिल से दुआएं निकलती थी, सब जो गीत सुनेंगे ना वो आपको उस साबन ने गीत बनाना, वो बाबा के हर चरित्र पर ध्यान देती थी, भाषण देती थी, मेरा शब्द निकलता है भाषण और भावना, समझा, भावना ऐसी हो जो जो भाषण जो आवे ना भूले नहीं। आज का जहाँ मेरे को बहन ने बोला शाम को आएंगे, मैंने कहा मैं आएंगे, पर हमारे पास शाम को भी कोई न कोई भाई बहन बैठते हैं, तो छुरा के मैं यहाँ आई, पर बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये एक मुझे याद आया, आज मुझे किसी ने बहुत अच्छी एक कविता कहें या क्या कहें लिख कर भेजिए, मैं आपको देंगी, बहुत अच्छी लिखी है, क्योंकि सभी को अभी जैसे ये साढ़े सात का गीत बजता है, जहाँ हमारा तन है वहाँ हमारा मन है। पहले ये गीत का भी वंडरफुल अनुभव है और सारे विश्व में साढ़े सात बजे ये गीत बजता है। इसमें वंडरफुल बात तो ये है, जो मैं जब विश्व में सेवा पर निकली तो देखा जो मधुबन से देखते है ना, वो वहाँ करते हैं। तो जो ये ट्रैफिक कंट्रोल का जो गीत बजता है तो क्या था, पहले पहले जब ये बात निकलने के लिए गीत बजे तो क्या था, जो यहाँ का टाइम समझो था संडे का, यहाँ का साढ़े छः वहाँ के साढ़े छः नहीं, यहाँ के अनुसार साढ़े छः के जो टाइम होता था ना वहाँ योग करते थे। तो मैंने फिर दादी प्रकाशवाणी को कहा, दादी अभी टाइम अनुसार यहाँ से जहाँ चार घंटा छः घंटा आठ घंटा तो कैसे होगा। दादी ने कहा फिर तुम सारे विश्व को ये ध्यान खींचवाओ साढ़े छः शाम का, जहाँ साढ़े छः होगा टाइम होगा वहाँ उसी टाइम ही होगा। जो दादी ने ऐसा अच्छी तरह से ऐसी बात सुनाई तो सारे विश्व में को मैंने कहा तो गीत ये, क्योंकि मैंने देखा है बहुत फायदा होता है ट्रैफिक कंट्रोल का, यानी सारे दिन में जब भी ट्रैफिक कंट्रोल बजता है अटेंशन जाता है याद में रहने का, और याद में कोई बहन ने तुम्हें सुना ना शायद, कोई बहन ने कहा मुझे योग नहीं लगता मैं क्या करूं, तो मैं उसी टाइम में बहुत शुरू शुरू में कई बहन भाई नए नए होते थे वो योग क्या है कैसे कर रहे, हमेशा कहते थे योग क्या योग। अभी बाबा ने मुझे पर्सनल सिखाया, जैसे बच्ची सिखाने के समय तुम बाबा मेरा साथी है, निज ज्ञान जो है ना पार्ट हो जाने ड्रामा का, उसमें हम साखी हो जाते हैं। तो बाबा यहाँ साथी है, हम यहाँ पाठ बजाते हुए आज आप लोगों को यहाँ देखा, फर्स्ट टाइम देखा है, मुझे याद नहीं है पहले कहते आई थी। तो साथी यहाँ मेरा बाबा साथी, यहाँ हमको साखी बना करके ऐसा सिखाया है जो कोई भी किसकी भी निंदा नहीं करेंगे, गिलानी नहीं करेंगे, नहीं ये काम हमारा नहीं है, हमारा काम क्या है, हमारा काम क्या है न्यारा और बाबा का प्यारा। हर आत्मा एक दूसरे न्यारी है, दो एक जैसे नहीं होंगे ये पता है, परंतु बाबा के बच्चे है अलग अलग, पर बाबा के बच्चे है ये भावना है। तो सभी को ऐसी भावना आती है बाबा की याद का पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिक बाबा सामने आ जाता है, ये पलकों में बाबा बिठाता है ना हमको, तो बाबा सामने दिखाई पड़ता है। तीनों लोकों में साकार में आओ तो साकार, सूक्ष्मतन में जाओ अव्यक्त बाबा, मूलोतन में जाओ बाबा वहां भी तुम आना, वहां आवाज से परे है, ये भी प्रैक्टिस करनी है। दिन भर में कोई भी कार्य है, कार्य करते हुए अंदर से, क्योंकि जैसा वायुमंडल वातावरण, पहले वातावरण जैसा वातावरण बात चलती रहेंगी, ऐसा वायुमंडल बनता है, ऐसे वाइब्रेशन जाते हैं, समझा? ये बहुत अच्छी विधि है, जैसी वार्ता बात, ये अभी सभी का ध्यान कितना अच्छा भाई साहब के चरित्र पर ध्यान खींच पाया, सभी को जो अनुभव था सुनाया, राइट। अभी क्या है ये जो अनुभव आना, वो सुख देना सुख लेना, सारी लाइफ में रमेश भाई ने न दुख दिया होगा न लिया, सुख देना माना जो भी कुछ हो रहा है चाहिए। मैं तो बहुत साल बॉम्बे में रमेश भाई के साथ रही, नीरज भाई भी तभी पैदा हुआ था, बहुत अच्छा ऐसे भाई बाबा को मिल गए बच्चे, और फिर बाबा बहुत खुश था। तो ये भाई सेवा करने में बाबा, उनके बाद कई सेवाएं शुरू हुई, परंतु ये बताती हूँ जब बाबा अव्यक्त हुआ तो दो चार भाई थे, बाकी बहनें थी। अभी देखो जितने भाई है उतनी बहने है, मन ताली बजाओ ना, इतनी वंडरफुल बात है। भाई पवित्रता में, सच्चाई में, खान पान में शुद्ध बाबा पवित्र बन जाए, कितनी अच्छी बात है। बाबा देख रहा है, जब पहले बाबा के होते बाबा ने मुझे बेंगलोर में भेजा था, हृदय पुष्प दादी थी, उसने मेरे को बुलाया पुणे से, इतना अच्छा लगा। तभी सेंटर कुछ नहीं था, ये हमारी रोजी का माँ बाबा रहते थे, उनने के घर में मैं रही, उन्होंने धर्मशाला में सत्संग कर रखा, इतना अच्छा बेंगलोर में बाबा ने सेवा कराने के निमित्त बनाया। तो सेवा क्या है, वायुमंडल अच्छा बनाओ, वायुमंडल में वाइब्रेशन कैच करने में ऐसे लगता है अभी बाबा ये वंडरफुल वाइब्रेशन से बाबा याद आता है ऑटोमेटिक, याद करना नहीं पड़ता है, नेचुरल बाबा मेरा, मैं बाबा का, तो मैं बाबा का बाबा मेरा, इसमें संबंध में जैसे लाइट माइट दोनों काम कर रही है। हर लाइट में दो शब्द है, हल्कापन भी है रोशनी भी है, दोनों काम चलते हैं। इसलिए 8 बज रहा है, आपको भोजन भोजन में जाना है, पर मुझे बहुत खुशी हुई जो सबसे मिल करके आज मैंने बहन जी को कहा हम आएंगे। ओम शांति, थैंक यू।
बहुत बहुत शुक्रिया दादी जी, भ्राता जी के साथ के इतनी सुंदर और मधुर बातें आपके मुखारविंद से हमें और प्रेरित कर रही है। दादी जी, भ्राता जी को जितने भी स्पार्कलर्स आए हुए हैं इस स्पार्क विंग में बहुत करीब से जानते हैं और दिल से बहुत श्रद्धा बहुत भावना स्नेह और सम्मान है। तो अभी आप सबके हाथ में कैंडल दिए गए हैं, वो कैंडल जलाए जाएंगे और दादी जी सभी एक मिनट के लिए कैंडल के साथ दीप के साथ भ्राता जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, मौन श्रद्धांजलि। तो मैं निवेदन करूंगा कि जो भी कैंडल जलाएंगे एक मिनट के लिए ही हम ये करेंगे, ये हमारी मौन श्रद्धांजलि है भ्राता जी के लिए। और सभी के हृदय की सुंदर और शुद्ध भावना थी कि हम भ्राता जी के लिए जरूर करें। तो मैं कहूंगा वॉलेंटियर्स को कि वो जो भी कैंडल है उसे लिट करेंगे और दादी जी के साथ हम सभी भ्राता जी को अपनी मधुर प्रेमपूर्ण सम्मानपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। साथ साथ हमारे साथ अनुरूप भाई जी भी उनकी स्मृति और साथ ही श्रद्धांजलि हम अर्पित कर रहे हैं, आदरणीय भ्राता जी के जो अंग संग रहे हैं। स्पार्क के भी महाराष्ट्र के कोऑर्डिनेटर रहे हैं, प्रारंभ से ही स्पार्क के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया और साथ ही साथ यज्ञ के लिए भी बहुत आज्ञाकारी और वफादार होकर के रहे हैं आदरणीय अनुरूप भाई मराठे जी, आप जानते हैं, स्पार्कलर्स जानते हैं। तो भ्राता जी के लिए और साथ ही अनुरूप भाई जी के लिए अभी हम सबकी दीपक के साथ मौन श्रद्धांजलि। सभी के कैंडल्स लिट हो रहे हैं और ये कैंडल्स हमें याद दिलाते हैं, दीपक याद दिलाता है कि जैसे प्रकाश या ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होता, उसका रूप ही परिवर्तित होता है, वैसे ही भ्राता जी का कलेवर परिवर्तित हुआ है लेकिन अभी भी इस प्रकाश की तरह वो हमारे साथ हैं। उनका आध्यात्मिक प्रकाश, उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा हमारे साथ साथ है। और साथ ही इस दीपक के साथ हम ये प्रण भी करेंगे, जैसे आदरणीय अंबिका दीदी जी बार बार कहती हैं और दादी जी ने भी हमें कहा कि हम भ्राता जी का जो संकल्प था उस संकल्प को अवश्य पूर्ण करेंगे, विश्व में प्यारे बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे, बाबा की हर आश को पूर्ण करेंगे, यही भ्राता जी के लिए हमारी सुंदर श्रद्धांजलि होगी। तो हम सभी अपने स्थानों पर खड़े होंगे। सभी दादी जी हमारे साथ साथ हैं, दादी जी ने हम सबके साथ मिलकर आदरणीय भ्राता जी को और अनुरूप भाई जी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। दादी जी अब हम सबसे विदा ले रहे हैं, एक हाथ की ताली से दादी जी को दादी जी आदरणीय भ्राता जी को पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। दादी जी के साथ साथ हम सब भी अपने श्रद्धा सुमन पुष्प के रूप में अर्पित कर रहे हैं, दादी जी में हम सब समाये हुए हैं और भ्राता जी को पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। हमारे सभी वरिष्ठ भाई बहने भी भ्राता जी को पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। दादी जी ने भ्राता जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अब अनुरूप भाई जी को भी दादी जी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, अनुरूप भाई मराठे जी को भी जो स्पार्क के कोर कमेटी मेंबर रहे और पूरे जीवन स्पार्क के लिए बहुत बहुत कुछ किया, उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को लीड किया, हम सबके वो भी प्रेरणा स्रोत हैं, आदर्श हैं। उन्होंने भी अभी ही 2016 में अपने पुराने देह का त्याग किया। आदरणीय दादी जी अनुरूप भाई मराठे जी को भी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही हैं। हम सब दादी जी के साथ सम्मिलित हैं। एक हाथ की ताली दादी जी के लिए, हमारी प्राणों से भी प्यारी, हमारी दिल की दुलारी, हमारी आंखों की प्यारी, हमारी प्यारी माँ, उनको एक हाथ की ताली से हम प्यार से शुक्रिया अदा करते हुए कि दादी हमारे बीच आई, और कल के लिए निमंत्रण कि दादी पुनः हमारे बीच आएंगे कल, है ना। एक हाथ की ताली बजाए, दादी कल भी आएंगे हमारे बीच, परसों भी आएंगे, नरसों भी आएंगे। थैंक यू दादी, थैंक यू।